अंतर्राष्ट्रीय टीम के हालिया अध्ययन से ये बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रथम लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं, जो 50,000 साल पुरानी है। फिर भी बहुत से ऑस्ट्रेलियंस को हमारे इन प्रथम लोगों या कहें कि मूल निवासियों के इतिहास के बारे में बहुत ही कम पता है। 2014 का ऑस्ट्रेलियन रिकन्सिलिएशन बैरोमीटर दिखाता है कि केवल 30% ऑस्ट्रेलियन मानते हैं कि उन्हें एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी है। 2011 की जनसंख्या गणना के अनुसार मूल निवासी ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर्स के वंशज हैं और पूरी जनसंख्या का 3% हैं। 1788 में ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन सेटलमेंट का परिणाम हुआ। इस भूमि के पारंपरिक उत्तराधिकारियों से भेदभाव रखने वाली पॉलिसीज, जिसका उनके घरेलू अधिकारों और उनकी परंपराओं, संस्कृति और भाषा पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। तो अब इसी पर एक बात। बहुत दुख होता है जब कभी भी गुरेंग गुरेंग एल्डर रिचर्ड जॉनसन अपने पूर्वजों के दर्द भरे अतीत की बात करते हैं, उसे याद करते हैं जो उनके पूर्वजों ने कॉलोनाइजेशन के समय झेला। जॉनसन की ट्राइब पूरी तरह से गुम हो गई थी जब यूरोपियन सेटलर्स ने अपने कदम उनके इस पारंपरिक देश में जमाए। ये था मध्य दक्षिण क्वींसलैंड का क्षेत्र और उस पीढ़ी के आखिरी जीवित व्यक्ति थे जॉनसन के ग्रैंडफादर।
One of the chases that was perpetrated upon our people, where they were hunted down and ran over to a place called Magool, which is the mountain that they hid themselves on. And he was placed in the undergrowth by his uncle, Gimimi. And Gimimi told Grandfather Newlang that he should wait in the grass or in this hollow log, and they came back and collected him after dark. So, you know, we were fortunate. We wouldn't be here today if that didn't happen. He may have been killed. He may have been taken away and put in an institution with other children and raised as a European. So our history would have been a whole lot different.
न्यूयांग के जीवित रहने से ही उनके परिवार का वंश आगे बढ़ा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बहुत से इन प्रथम लोगों की तरह जॉनसन का परिवार भी अति कठोर और दमनकारी पॉलिसीज का दंश पीढ़ी दर पीढ़ी झेलता रहा। 1867 से 1911 के बीच 6 राज्यों के द्वारा संरक्षण की पॉलिसी बनाते हुए कानून लागू किए गए और कानून का लक्ष्य था पूर्ण रूप से एबोरिजिनीज लोगों को पृथक करना और बांटना और हाफ कास्ट बच्चों को आत्मसात करना। स्टोलन जनरेशन के नाम से जानी गई इस स्थिति में आंशिक तौर पर एबोरिजिनल बच्चे अपने परिवारों से अलग कर दिए गए और उन्हें फॉस्टर होम या संस्थानों में भेज दिया गया जहां उन्हें यूरोपीय रंग ढंग में ढाला जा सके। इसका निर्णय स्टेट्स के पास था कि एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग कहां रह सकते हैं और किसके साथ शादी कर सकते हैं। 1970 तक इंडिजिनस भाषाओं का बोलना अधिकतर बड़े स्तर पर सीमित और प्रतिबंधित था। यूरोपियन सेटलर्स से पहले इन प्रथम लोगों द्वारा कोई 250 भाषाएं बोली जाती थीं। हाल ही में प्रोडक्टिविटी कमीशन की एक रिपोर्ट ओवरकमिंग इंडिजिनस डिसएडवांटेजेस से पता चलता है कि 2012 तक 120 भाषाएं किसी न किसी रूप में जीवित रहीं और अब अधिकतर लुप्त हो चुकी हैं। बस 13 से 18 तक ही भाषाएं बची हैं जो आज भी बोली जा रही हैं।
They restricted our use of our languages. The speaking of language between individuals and in families, people weren't allowed to speak their language for fear of being removed. So the speaking of language and the communication between one another became suppressed to the point that it was only done out of sight and out of earshot of people who may not have shared our cultural needs and requirements.
बुंडाबर्ग क्षेत्र में तरीबलेंग वंश के भूमि और समुद्री रेंजर हैं डेसमंड पार्सर। वो कहते हैं एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग अभी तक अपनी इंडिजिनस भाषाओं के नाश की सच्चाई को स्वीकारने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं और वो आहत हैं।
Language is a big thing for any culture, you know, to have that language. That's what kind of separates you, you know, you've got that different lingual talk. For people to come in and take that off you, that's a sense of identity that's lost. And to try and rebuild that and getting that back, that's a big step in building and having that reconciliation. Because no one can just say sorry and think that it's all going to be, you know, rainbows and butterflies. It doesn't work like that. We got to find ourselves as well and move on.
एबोरिजिनल और टोरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को वोट देने या सोशल सिक्योरिटी जैसे पेंशन और मैटरनिटी अलाउंस का 60 के दशक के अंत तक कोई अधिकार नहीं था। 1962 में पहली बार इंडिजिनस समुदाय को समान अधिकार मिले फेडरल चुनावों में वोट देने का, लेकिन बहुतों को इस बदलाव का पता नहीं चला और 1984 तक इनको वोट देना अनिवार्य भी नहीं था। बहुत से राज्यों में एबोरिजिनल मामलों को वही डिपार्टमेंट देखता जो वन जीवन, फूल और वनस्पति के मामलों को देखता था। जनगणना में उनको ना शामिल करने का अर्थ तो यही रहा कि उन्हें फूल और वनस्पति की तरह ही माना गया, यानी 1967 में आए रेफरेंडम के बाद ही, जिसमें 90% जनसंख्या ने उनके अस्तित्व के पक्ष में वोट दिया, हमारे ये प्रथम समुदाय के लोग आधिकारिक तौर पर इस देश की जनसंख्या का हिस्सा बने। रिचर्ड उस समय 16 साल के थे जब ये लागू हुआ।
We were recognized as citizens and given the right to vote, even though prior to that some of our people were allowed to vote. There was no official recognition or instruction from government about Aboriginal people being recognized in the census. And so we jumped from being part of flora and fauna into being real people. And I preferred to stay as flora and fauna. It makes me indigenous to the country, to the land upon which I walk and live and raise my family.
इस तरह से 1967 का रेफरेंडम एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा बना जब एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों के साथ ये औपचारिक भेदभाव खत्म हुआ। इसके 2 साल के बाद सभी राज्यों ने उस बिल को खारिज किया जिसके तहत संरक्षण की पॉलिसी के साथ एबोरिजिनल बच्चों को अलग करने का अधिकार था। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने एक स्टोलन जनरेशन के प्रति एक औपचारिक तौर पर माफी क्षमा याचना की और रिचर्ड जॉनसन को आज तक याद है इससे पहले 1992 में लेबर मंत्री पॉल कीटिंग द्वारा दिया गया रेडफर्न पार्क में भाषण जिसमें अपराध बोध की स्पष्ट बात थी।
We took the traditional lands and smashed the traditional way of life. We brought the diseases and the alcohol. We committed the murders. We took the children from their mothers.
श्री कीटिंग पहले ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने भाषण में इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस पर शुरू शुरू में आए यूरोपियन सेटलर्स द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार की बात की। 2000 में औपचारिक तौर पर रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को नई ऊंचाई मिली जब कोई 5 लाख लोगों ने रिकन्सिलिएशन के समर्थन में सिडनी हार्बर ब्रिज पर मार्च की।
I remember it was a very emotional time for a lot of people, and the fact that there was a march over the Sydney Harbour Bridge, I think those particular instances for me derived a lot more feelings of times are changing. Sadly, the changes that we've seen have been too rare.
Reconciliation Australia एक महत्वपूर्ण संगठन है जो First People और गैर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेतु का काम करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसके सीईओ जस्टिन मोहम्मद का कहना है कि सिडनी हार्बर ब्रिज मार्च जैसी क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ पिछले दशक में ही कोई 800 संगठन, बिजनेस, कम्युनिटी ग्रुप्स ने स्वयं के रिकन्सिलिएशन प्लान्स लागू किए ताकि पहली की गई गलतियों को सुधारा जा सके।
There's been 25 years of this formal approach of reconciliation. The people have grown up with the bridge walks, the apology speech, which was more recently by the former Prime Minister, Kevin Rudd. When they were in positions of authority and leadership, you know, the world's changed a bit about what can that organisation or company put back into maybe the social environment or the or people that are disadvantaged. So there is a natural sort of calling for these corporate bodies to be able to be more socially conscious with Aboriginal people.
Shri Desmond Parcell ka kehna hai ki First Nations people ki baar-baar nakaratmak taur par media ki coverage se bahuton ka manobal kharab hua hai.
Because you've been told so much that you can't do nothing and you've been knocked down and knocked down and knocked down, you know, it's a lot of people just kind of give up and we can't do that. It can't be a part of our mentality to give up. We've got to keep on pressing on and to be counted.
Indigenous aur gair indigenous Australia ke beech sampark bahut hi kam hai. State of Reconciliation mein Australia ki report se pata chalta hai ki aam janta mein se 30% hi janta Aboriginal aur Torres Strait Islander se sambandh rakhte hain, yani socialize karte hain. Parcell ka manna hai ki agar sampark badhaye jaye to kai rukawatein kam ho jayengi.
Get out and meet a couple. Ask about our culture and don't be scared or standoffish. And, you know, like every race, you might run into a few bad ones, but majority of us are good. Yeah, get out there and try and immerse yourself in the culture. And please don't try and impose other traditions upon us. You know, we've got our own. We're not trying to impose anything on yous either. But get out there and get to know us a bit better.
मोहम्मद बताते हैं कि 80% ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं जो उन्हें स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया. वो मानते हैं कि उनके अतीत के बारे में इतिहास की जानकारी तथा उनके साथ बनाए गए संपर्क से इन समुदायों में उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आ सकता है. श्री जस्टिन कहते हैं कि सही मायनों में समानता तभी पाई जा सकती है जब ऑस्ट्रेलियन संविधान में फर्स्ट नेशंस पीपल को औपचारिक रूप से मान्यता मिले.
It's about acknowledging Aboriginal and Torres Strait Islander people were the first people of this country. It just sets the record right for any future development. From there, we can start addressing the issues that are at hand, but also importantly plan for the future.
प्रथम समुदायों के लिए अतीत, वर्तमान और भविष्य में क्या-क्या चुनौतियां हैं? इस पर और अधिक जानकारी के लिए आप ये विस्तृत रिपोर्ट पढ़ सकते हैं द स्टेट ऑफ रिकंसिलिएशन इन ऑस्ट्रेलिया.